ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
வியாக்கியா பூரா லிக்கி கிந்து கி தீர்த்தாட்டன் கே தோ மாமா கே பாஸ் ரியா ஆகே தீர்த்தாட்டன் பகவான் சங்க பர்சேகர மனா கே நீ ஜாஓ. वहां उन्होंने देखा ये तारे अद्वैत मत है, मीमांसा का कर्मी थे द्वैतवादी, बड़े बढ़िया ग्रंथ है, ये ग्रंथ प्रचार हो जाएगा तो हमारे मत नहीं रहेगा, उसको जला दिया, घर भी जला दिया. क्या घर जल गया? घर को जल पुस्तक पुथी में लिखते थे किसी, उसको जला करके पुस्तक जला दिया, घर जला दिया, जब आए कहीं जल गया. और फिर उनको लगा कि ये बुद्धिमान है, फिर जाकर लिख लेगा, उसको बुद्धि को खराब करने के लिए ऐसे कुछ चीजें खिलाया, बुद्धि ह्रास हो जाए. वो फिर आकर के भगवान गुरुजी के पास पहुंच के पद्म पादाचार्य कहे मैं तो सब अब जला दिया, बड़े दुखी है, और अभी कहे दोबारा लिखो, कहे कुछ पूरा नहीं होता, हमको कुछ कर दिया तो बुद्धि अभी कम होगी. भगवान भाष्यकार ने कहा आपने हमको सुनाया था लिखकर के चार सूत्र, इसको हम बता देते, इसको लिख लो. चार सूत्र उन्होंने लिखा, जो व्याख्या लिखी थी पंचपादी का नाम, उसको गुरु जी को भगवान वासेकर को सुनाया था. भगवान वासेकर इसको लिख लो. अभी चार सूत्र के ऊपर जो व्याख्या है उसका नाम पंचपादी का, इसके ऊपर विवरण है प्रकाशात्म, इतने लिखा है व्याख्यान विवरण, बड़े ग्रंथ बन गया. विवरण के ऊपर व्याख्या है, वो पठन पाठन करते. अभी चार सूत्र की व्याख्या, चार सूत्र की व्याख्या करते समय विवरणाचार्य ने बहुत वेदांत उसमें रख दिया, तो ये ग्रंथ है चार सूत्र. किंतु आगे भी ब्रह्मसूत्र में भाष्य है, टीका है, पठन पाठन होता है, बहुत लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं. तो पंचम सूत्र आगे इच्छते ना शब्दम, अशब्दम तो शब्द श्रुति प्रतिपाद्य नहीं, जो प्रधान तुम कहते हो. सांख्य लोग जो प्रधान को कल्पना करते अनुमान से सिद्ध करते हैं, कार्य त्रिगुणात्मक है तो कारण भी त्रिगुणात्मक होगा. अशब्दम तो जिसमें श्रुति शब्द है नहीं, अशब्दम न, प्रधान को अशब्द शब्द से क्या श्रुति प्रमाण नहीं है. अशब्दम प्रधानम न जगत कारण न, क्योंकि आप जो कहते ब्रह्म जगत का कारण जन्मादेशयत जो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कौन है? जन्मादेशयत जिसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय वही ब्रह्म है. सांख्य लोग कहते उत्पत्ति स्थिति प्रलय प्रधान से होता है, इसी प्रधान को आप ब्रह्म शब्द से कहते हो. अप्रधान एक है, ब्रह्म एक है, मानो कोई आपत्ति नहीं, ब्रह्म अद्वितीय है ना. अद्वितीय ब्रह्म कौन है? जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय. तो कहते हो कौन मालूम है? हमारे प्रधान, उससे जगत की उत्पत्ति होती और जगत उसमें स्थित है, प्रलय होने पर प्रधान बन गया, इसे प्रधान को ही ये लोग ब्रह्म कहते हैं. इसे कहते इच्छतेर ना शब्दम, जो जगत बनाने वाला इच्छण करके बनाया, जड़ इच्छण करेगा क्या? जड़ सोचेगा मैं इसे करूं? इच्छते ना शब्द यहां ब्रह्म सूत्र में तद इच्छत बहु श्याम प्रजा. जो परमात्मा ने जगत बनाए, इच्छण क्या, संकल्प क्या, विचार क्या, बहुत बन जाऊ, उत्पन्न हो जाऊ, ऐसा करके सृष्टि की. इसलिए जड़ प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता है. जड़ कभी सोचेगा मैं इसे करूं? वहां फिर आया कोई, इसमें क्या बड़ी बात है, इतने लिए प्रधान नहीं लेगा. कोई नदी किनारे खड़े है, बाढ़ आते समय लोग देखते हैं नदी में किनारे खड़े खड़े देखते, कभी कभी बहुत जल आता है तो नदी के नीचे से ले लेता है, ऊपर से फिर गिर जाता है. लोग कहते देखो ये किनारे कुलम पिपति सती, नदी का जो तट है अभी गिरना चाहता है, गिरने वाला है, नीचे चल गया ऊपर फट गया, इधर आ जाओ. देखते सब लोग, हमने भी देखा है कहीं नदी में देखते देखते ऊपर से गिर जाता है. ऐसे तो कितना होता है, अभी अभी भी वर्षा के समय, अभी तो नहीं देखते, कभी देखे तो ना बाहर देखते, देखो कुल गिर रहा. क्या कहते? कुलम पिपति सती, पति तो इच्छति, गिरना चाहता है. जो तट है मिट्टी का ढेल पत्थर है और गिरना चाहता है, चाहता है क्या? चाहना तो चेतन का धर्म, और चेतन है क्या? जड़े में भी ऐसे प्रयोग किया जाता है, कुलम पिपति सती पति तो इच्छति. तो इसी प्रकार प्रधान जगत बनाने के लिए ऐसे कह सकते, इसी प्रकार इच्छा करता है, इच्छा करके बनाया. इच्छा नहीं है, आगे नियत क्रम से जगत बनता है, तो बनने के पहले इसे जैसे गिरने के पहले लोग कह देते कुलम पिपति सती पति तुम इच्छति गिरना चाहता है, कुल तट है गिरना चाहता है। जैसे लोग कहते ऐसे जब प्रधान अभी परिणत होकर के जगत बनना है तो वहां श्रुति कह दिया वो ईक्षण करता है, ईक्षण कर दिया तो गौणश्चेत गौण, ये गौण शब्द यहाँ जो ईक्षण आया वो गौण है, मुख्य ईक्षण नहीं है। तो कुल में जैसे कुल गिरना चाहता है ऐसे कहते हैं, जड़ में गौण है ना नहीं मुख्य है कौन है, तो यहां भी जो ईक्षण गौणश्चेत सिद्धांत कहता है उसमें ब्रह्मसूत्र गौणश्चेत न आत्मशब्दार्थ, यहाँ आत्मशब्द दिया है जो ईक्षण करने वाला आत्मा वही आत्मा है, आगे आत्मशब्द आएगा वही आत्मा ही है, ईक्षण करने वाला आत्मा है। अनन्य जीवन आत्मा अनुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकरवाणी आगे आएगा आत्मशब्द, उसमें आत्मशब्द दिया तो आत्मशब्द देने से क्या होगा, वो चेतन लेना पड़ेगा, जड़ नहीं ले सकते। फिर कोई कहते कि आत्मशब्द भी तो गौण प्रयोग कर सकते है, आत्मशब्द भी गौण प्रयोग होता है। राजा कहता है मम आत्मा भद्रसेना, ये मंत्री मेरा आत्मा ही है, सर्वार्थकारी सब मेरा कर्म करता है, कहते तो मेरा आत्मा है, आत्मा है वो। अपन से भिन्न को आत्मशब्द मेरे आत्मा मम आत्मा भद्रसेना, कोई मंत्री है बहुत प्रिय सब कार्य करता है ये तो मेरे आत्मा है, तो वहां तो गौण हुआ, ऐसे आत्मशब्द ही गौण हो सकता है। इसके आगे ब्रह्म से तनिष्ठ से मोक्ष उपदेशात, जो आत्मा में स्थित होता है उसका मोक्ष कहा गया। और गौण आत्मा गौण को कहीं मैं मान करके मोक्ष होगा, दूसरे को मैं मान करके, ऐसे करके उसका विचार बहुत आता है। तो यहां सद ब्रह्म जो था ईक्षण क्या भूत हो जाऊं ऐसे विचार करके तत्तेज असृजत, तेज की सृष्टि की, तत्तेज ईक्षत फिर तेज ईक्षण किया बहुश्याम प्रजा आई थी तद अपर जल की सृष्टि। यहां तेज की सृष्टि पहले कही गई, तैत्तर उपनिषद तस्माद वायु तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु, पहले आकाश की उत्पत्ति उसके बाद वायु की उत्पत्ति उसके बाद तेज की उत्पत्ति, ये नहीं कह करके तो तेज असृजत आकाश वायु का नाम ही नहीं, ये कैसे हुआ। इसलिए यहां कहते आकाश वायु सृष्टवा तो तेज असृजत, इसे कर सकते आकाश वायु की सृष्टि करके तेज हो सकता है। कोई व्यक्ति ने भोजन बनाया, पहले सब्जी बनाई उसके बाद दाल बनाया उसके बाद भात बनाया अभी रोटी बना रहा है, इसे कहे। और कभी कहते हैं पहले सब्जी बनाई उसके बाद दाल बनाया उसके बाद भात बनाया अभी रोटी बनाया, इसी क्रम से नहीं कह करके सब्जी दाल भात बना करके रोटी बना रहा है, कह सकते हैं। अच्छा कुछ नहीं अभी पाचक रोटी बना रहा है, कह सकते हैं। उसने रोटी बना दी, आए भोजन कर रोटी बन गई, मतलब भात सब्जी नहीं बनी, परमात्मा ने तेज की सृष्टि की। वो भोजन बनाने वाले अभी रोटी बना दिया अच्छा भोजन करेंगे, इसका अर्थ सब्जी दाल भात नहीं बनाई अर्थ आएगा, तो पहले बना दिया यहां से ले लिया तो उसके पहले बनाकर बनाया ये अर्थ। इसलिए वहां आकाश की सृष्टि वायु की सृष्टि का तेज की सृष्टि नहीं कहा, यहां कहा तेज की सृष्टि, एक समाधान ऐसा दिया। और एक दूसरा समाधान दिया, वस्तु तो ही सृष्टि कही जाती है ना, इसी प्रकार सृष्टि हुई इसको श्रुति कहती, सृष्टि पहले हुई जिस प्रकार सृष्टि हुई, श्रुति ऐसे आप लोगों को बताती है पहले आकाश आदि सृष्टि हुई उसके बाद वेद में लिखा गया श्रुति, ऐसा है क्या। श्रुति अनादि है या जगत की जैसे सृष्टि हो उसको श्रुति में बताते हैं, अनादि मतलब सृष्टि होने के पहले वेद था, पूर्व कल्प में वेद ऐसे था उसके पहले भी ऐसे था। सृष्टि जहां जहां जितने आख्यायिका है, इंद्र विरोचना संवाद हो प्रत्यर्दन है, यमन अचिकेता संवाद हो, इंद्र विरोचना दोनों गए थे प्रजापति के पास, जितने याज्ञवल्क मैत्री संवाद है, जनक याज्ञवल्क संवाद है, ये सब संवाद होने के बाद वेद लिखा गया ना, ऐसा मानेंगे तो वेद अनादि कैसे होगा। पहले संवाद हुआ उसके बाद कितने साल के बाद किसने लिखा है, ऐसा कहेंगे तो वेद अनादि कैसे होगा। तो संवाद पहले हुआ, वेद पहले था, इससे जितने संवाद आख्यायिका है ये वेद के पहले हुआ उसके बाद लिखा गया, ऐसा नहीं। वेद अनादि है पहले से, यदि पहले से है तो फिर आख्यायिका वास्तव नहीं है। इसे कहीं कहीं कहते आख्यायिका का तात्पर्य क्या है, सुख से सरल से ज्ञान हो जाए, कहीं कहीं विद्या ग्रहण करने के लिए क्या विधि है इसको बताने के लिए, किस प्रकार विद्या ग्रहण के लिए अधिकारी इसको बताने के लिए। किंतु ये भी नहीं कह सकते कि जनक याज्ञवल्क्य का समाध कभी नहीं हुआ था, ये भी नहीं कह सकते। वेद में पहले से है, जैसे वेद में पहले से अनादिकाल से है, उसके अनादिकाल से कितने कल्प हो गए, कभी इस प्रकार घटना हुई नहीं ये निश्चय हो जाएगा। जैसे वेद में इसे बार बार हो सकता है, प्रलय होता है फिर सृष्टि होगी, जैसे वेद में क्या ऐसे सृष्टि होगी, हो सकती है ना नहीं। याज्ञवल्क मैत्री समाध पहले नहीं, सृष्टि के बाद कितने सृष्टि कितने कल्प में होगा। रामायण अलग अलग क्यों दिखता है, वाल्मीकि रामायण तो अलग है और अलग अध्यात्म रामायण अलग है, सुंदर रामायण क्या कितने रामायण है। भाषा ग्रंथ छोड़ दो, संस्कृत में भी बहुत रामायण है, सारे मतभेद भी कहीं कहीं है रामायण में। इसी प्रकार ये रामायण एक बार कल्प कल्प राम अवतार, कितने बार राम अवतार हो गया, कितने बार कृष्ण अवतार हो गया, कितने कल्प चलेगी, इसी प्रकार किसी कल्प में इसी प्रकार घटना हुई थी होगी, आगे भी होगा। जैसे वेद में कहा गया ऐसा आगे कभी होगा, होगा तो क्या कोई विरोध करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वेद में पहला है अभी क्यों हुआ। जैसे लिखा गया ऐसे कितने बार हुआ होगा, आगे भी होगा। वेद है अनादि नित्य है, जो वेद में है ऐसा ही होता है। पहले नहीं हुआ तो अभी भी होगा, अभी हो रहा है आगे भी होगा, कभी भी हो सकता है, कितने बार हो गया पहले नहीं, क्यों वेद के पहले नहीं, किन्तु अनादिकाल वेद से सृष्टि कितने बार हो गई मालूम है, कितने बार, 10-20 बार सृष्टि हो गई ना नहीं, नहीं सृष्टि नहीं हुई, बस अनंत अनंत कोटि कितने बार हो गई। इतने के बार वेद में कभी किसी प्रकार सृष्टि क्रम में कुछ भी हो सकता है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। सृष्टि का तात्पर्य सृष्टि में नहीं, इसलिए कहीं कह दिया आकाश आदि की सृष्टि, कहीं कह तेज की सृष्टि, वास्तव सृष्टि हो तो एक क्रम से बताएंगे, वास्तव नहीं तो क्रम क्या कहना। सपने देखा, हाथी देखा, पहाड़ देखा, समुद्र देखा, पहले क्या बना था, सपने में हाथी पहाड़ समुद्र देखा, पहले क्या बना, क्या बना पहले क्या। ये सृष्टि का तो एक साथ भी हो, सपना भी कभी एक साथ हो जाती, कभी क्रम से होता है, कभी देखा समुद्र का है वहां लोग मकान बना रहे, मकान बनाकर खड़ा कर दिए, देखते देखते मकान बन गया, ऐसा कभी सपने देख सकते है। ऐसे भी सृष्टि भी इस प्रकार युगपद सृष्टि अथवा क्रमीण सृष्टि, क्योंकि द्विविध स्वप्न दर्शनार्थ पंचोदेश में आया। सृष्टि भी इस प्रकार क्रम से हुई अथवा एक साथ हुई कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सपने से दिखता है, कभी तो क्रम से कभी एक साथ हो गया। वस्तुतः तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं होने के कारण सर्वत्र एक प्रकार नहीं है, इसलिए यहां समाधान दिया। सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, वहां आकाश से कहा तेज से कहा, अच्छा तेज होने के बाद तेज ऐक्षत तेज निरीक्षण किया, तेज कैसे क्षण करेगा, सद ब्रह्म तेज हो गया, तेज भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म ने क्षण किया, तो तेज ऐक्षत का क्या अर्थ हुआ, पहले ब्रह्म था सदरूप, वो पहले क्या निश्चय किया, बहुत हो जाऊं, तेज सृष्टि करने का अभिप्राय क्या है, स्वयं तेज भाव को प्राप्त कर लिया। तेज रूप से स्थित ब्रह्म ने फिर ईक्षण किया, ईक्षण तेज ऐक्षत का क्या अर्थ होगा, तेज रूप को प्राप्त हुआ ब्रह्म ने फिर ईक्षण किया, ईक्षण करके क्या ईक्षण किया, बहुत श्याम प्रजा इति यहां करके फिर जल की सृष्टि की, जल भाव को प्राप्त कर लिया, जल भाव को प्राप्त करके पृथ्वी को बनाया। इसी प्रकार तस्माद यत्र क्वच सोचती स्वेदते वा, जहां कहीं तप शोक करता है अथवा पसीना स्वेद निकलता है पुरुष, वो जल जहां आया तप करता है पसीना निकलता है, तो तद तेजस तद अध्य आप जायन्ते। तेज से उत्पन्न हुआ जल द्रव्य द्रव्य रूप है, जहाँ सोचती का तो तप सम्यक तप्त है, शोक करता है तो आंसू निकलता है, कभी पसीना निकलता है, तेज से ही वह जल उत्पन्न हुआ। अभी तेज भाव उत्पन्न होकर के जल बनाने के बाद जल भाव उत्पन्न ब्रह्म ने परीक्षण किया, ता आप इच्छंत बह्यश्याम प्रजाए महीति तान्नम असृजंत तस्माद् यत्र क्वच वर्षति तदिव भूष्टम अन्नम भवत्यद्भ्य एव तद्य अन्नाद्यं जायते। जल ने क्षण क्या जल का था, जलाकार में स्थित परब्रह्म जल रूप में स्थित, जिस प्रकार एक ही सद रज्जु सर्प रूप से स्थित हो जाता है, सर्प बना क्या रज्जु सर्प रूप से स्थित है, इसी प्रकार ब्रह्म ईक्षण करके पहले तेज रूप से स्थित होकर के ईक्षण करके जल रूप बन गया, जल रूप में स्थित होकर ईक्षण किया, बहु श्याम प्रजा में जन्म हो जाए, आप सद बहुचन से बहुचन दिया, तो अन्न मनुष्यजन तो पृथ्वी की सृष्टि की, तस्माद यत्र क्वच वर्षति जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होने से अभी भी जहां कहां वृष्टि वर्षा होती है वहां तदेव भूष्टम अन्न भवती अधिक अन्न होता है वर्षा होने पर, कभी कभी बहुत बहुत होकर के बन्या हो जाती, नहीं तो वर्षा नहीं होने पर सूखा मर जाते सस्य अन्न होता वर्षा होने पर, कभी कभी तो वर्षा आकर बाढ़ होने पर कोई बताए बिहार आदि में गंगा जी के पानी बह करके सब नष्ट हो जाएगा, किंतु इसके जो मिट्टी सब गिर जाता है सार इतना होता है, उसके बाद कुछ फसल होता है बहुत अधिक होता है, वन्या में सब चला गया मिट्टी जम गया, उसके बाद कुछ डालते बीज उसमें बहुत सब्जी रबी फसल बहुत अधिक हो जाता है, तो जल से ऐसे अधिक होता है वर्षति तदेव भूष्ट मन भवती, जल सिंचन व्यवस्था नहीं होने पर सब लोग वर्षा के ऊपर निर्भर करते, वर्षा होने पर जितने जल सिंचन व्यवस्था भी हो ऊपर वर्षा से पेड़ पौधे को लाभ होता है, जंगल में पेड़ बहुत है उसका जल सिंचन कौन करता है, ऊपर वर्षा से ही सब, वर्षा होने पर वृक्ष नहीं तो सूख जाते, पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता है, वर्षा नहीं होने पर जल के स्तर नीचे चल जाने से कहीं कुआं तालाब सब सूख जाते हैं, कुआं नीचे पानी नहीं मिलेगा, समय समय पर इसे होता है, लोग फिर पानी नहीं पी पाते हैं, पीने के नहीं मिलता है, तो ये जल भी उत्पन्न होता है, इसलिए जल से अन्न होता है क्योंकि अन्न जल से उत्पन्न हुआ, तद अद्य अन्नाद्यम अन्नम च आद्यम जायते। तेज से जल की उत्पत्ति श्रुति में कही गई, शंका करते तेज से कैसे पानी बने, ऐसे बता दिया तेज शरीर में गर्म होने पर पसीना निकलता है, जल में जो पदार्थ है मालूम है क्या क्या जल है, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O कहते ना, उद्जान कहते हाइड्रोजन उद्जान, एक अम्लजान, दो उद्जान और एक उद्जान क्या तो ऊपर जाता है, जो हाइड्रोजन उद्जान है ना उसको बैलून में रखा ऊपर चल जाएगा, उद्जान यो अम्लजान एक मिलकर के जल हुआ, अम्लजान क्या है जलने के लिए सहायक, दीप जलाओ अम्लजान रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा जलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बुझ जाएगा, परीक्षा करते हैं इसलिए दीप जलाओ उसके ऊपर कांच ढक दो, थोड़े समय में पानी चार तब रखो ऐसे ढक दो, थोड़े समय जलने के बाद बुझ जाएगा, और वायु में कितने भाग अम्लजान है मालूम है 20 पैसा रुपया में, इसे जो कांच में इसे करके जलाते हैं जो अम्लजान चला जाएगा इस कांच में पानी ऊपर उठ जाता है, जितना अम्लजान चला गया इतने पानी ऊपर आ जाएगा, ये माप होता है जिस कांच में चिन्ह रखते हैं, 20 पैसा है अम्लजान वो खत्म हो गया पानी ऊपर आ गया और 80 पैसा खाली और वायु अन्य है, अम्लजान जब तक रहेगा तब तो जलेगा, अम्लजान समाप्त हो गया तो बुझ जाता है, तेल है दीप है सब कुछ है कैंडल लगा कुछ लगा बुझ जाता है, और एक उद्यान क्या होता है स्वयं जलने वाला उद्यान वायु स्वयं जाए, उद्यान निकाला उसको मैचेस कर तो पूरा जल जाएगा, एक जलने वाला एक जलाने वाला दोनों मिलकर पानी हुए, अग्नि से पानी कैसे बना, अग्नि जलने वाले अग्नि अग्नि से जल निकला, जल में जो तत्व क्या क्या है जलने वाला और जलाने वाला दोनों मिलकर के जल बन गए और ये जल फिर अग्नि को बुझाती है बुझाता है, वैज्ञानिक लोग बताते तो सब ग्रहण कर लेंगे, और तेज से जल की उत्पत्ति आश्रित तेज से कैसे पानी बनेगा, उसमें दे दिया उदाहरण शरीर से पसीना निकलता है गर्म होने पर, दौड़ते गर्म होता है तो पसीना निकल जाता है, तेज से निकला। किन्तु यही प्रमाण है जल में जो तत्व है वो अग्नि तत्व को जलने वाला जलाने वाला तेज से निकलने में क्या पति। तो इसी प्रकार सृष्टि शास्त्र में जैसे आता है, शास्त्र में जो जो कहा गया अभी वैज्ञानिक प्रमाण करते हैं। मैं एक बार बताया था भागवत में आता है ये होम्योपैथी के औषध में, जो होम्योपैथी औषध बनाते हैं जो पढ़े हैं जानते हैं उसमें से एक श्लोक है, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयम् द्रव्यम् न पुनाति चिकित्सितम्। भागवत में प्रथम स्कंद पंचम अध्याय में 33वां श्लोक है। होम्योपैथी में क्या कहते हैं, अभी कोई चीज है, ये चीज एक पुष्प है, इसका के पारिजात कहते पत्र, इसे पत्र को पीस करके रस बनाओ और थोड़े थोड़े किसको सत्य वेतु पिलाओ, थोड़े पिलाओ फिर पिलाओ फिर पिलाओ, इसे पिला तो सात आठ दिन तक थोड़े थोड़े अधिक अधिक पिलाओ, मरेगा तो नहीं किन्तु पीने के बाद कोई चीज हो, इस चीज हो तुलसी पता हो कोई चीज को लेकर पिलाओ, प्याज भी रस निकाल के निचोड़े पिलाओ, पीते बहुत पीने के बाद उसके शरीर में कुछ विकार होगा, कोई जहर भी आकुनाइट आदि जहर होता है आर्सेनिक आदि उसके सब कम करके पतला करके थोड़े 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 पिलाओ, मरेगा नहीं किन्तु उसके शरीर में विकार होगा, जो जो विकार उसके शरीर में प्रतिक्रिया हुई उसको लेकर रखो कि स्वास्थ्य व्यक्ति में से बीमारी यदि हो गया जैसे वहां दिखा ये समय ये इसका लक्षण है, इसी पारिजात का क्या लक्षण है, शंखुआ विषय मोहर आकुनाइट आर्सेनिक विषय उसका क्या लक्षण, तुलसी पत्र पिलाओ क्या लक्षण, कुचिला खिलाओ क्या लक्षण, वो लक्षण देकर के औषध देते रोग ठीक करता है। ये वही होम्योपैथी में है, ये कहते आमय रोग यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत, भूत में प्राणी में जो रोग होता है जिसके कारण रोग होता है, जिसके कारण रोग होता है आमयो यश्च भूतानां जायते येन, जिसके कारण प्राणी में रोग होता है तदेव द्रव्यम किम चिकित्सितम आमयो न पुनाति, उसी द्रव्य को औषध बनाकर दो तो क्या रोगों को ठीक नहीं करता है, अर्थात तो वही द्रव्य औषध बन करके रोग को निवृत्त करता है, यही मूल मंत्र है होम्योपैथिक विज्ञान में, विषय न विषक्ष, जिस विषय से बिना रोग होता है थोड़े थोड़े दिन पर विषय के बिना ऐसे रोग किसको आया उसी विषय का बहुत कम अंश थोड़ा सा देना उसे रोग ठीक होता है, ये जो जानते उसमें ऐसे श्लोक है और होम्योपैथी के क्या मूल ऐसा है भागवत ने ठीक स्पष्ट एकदम दृढ़ करके दी, जो भूत में जिसके कारण रोग को प्राप्त करते है उसी रोग को ये द्रव्य क्या निवृत्त नहीं करता है अर्थात निवृत्त कर देता है, और इसे कहते जो जो रोग है होता है जहां जहां होता है उसके पास ऐसे ऐसे पदार्थ रहता है निवृत्ति के लिए, जो मधुमेह आदि कहते हैं डायबिटीज आदि कहते हैं, बिल्व पत्र से बिल्व पत्र बहुत होते हैं, बिल्व पत्र से कुछ बनाते औषध उसको ठीक करता है, बहुत वो सब जड़ी बूटी में बहुत पदार्थ ऐसा है, अर्थात शास्त्र में मुनि ऋषियों ने रखा है जो उसको परीक्षा करके देखते हैं तो जो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक की किसने कोई वैज्ञानिकों ने बनाया आयुर्वेदिक औषध, वैज्ञानिक के पहले आयुर्वेदिक औषध नहीं बनता था, शास्त्र है अभी भी शास्त्र जो आयुर्वेदिक पढ़ते वो शास्त्र पढ़ते वो पुराने शास्त्र मनुष्य के द्वारा रचित शास्त्र, किस जड़ी बूटी का कितने किसके मिलाकर क्या दवाई बने कि रोग को ठीक करेगा ये अभी खाली देख करके परीक्षा करके नहीं पहले बनाए इसी निर्णय लिखा है, तो शास्त्र में सब चीज ये, तो ये शास्त्र में जैसे जल से बना पृथ्वी और इसी प्रकार अभी सृष्टि बता करके आगे ही बताएंगे, एक ब्रह्म का ज्ञान इसके उपदेश करेंगे तत्त्वम से आदि उपदेश इसी में ही है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्।
मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणम् मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।